10 सितंबर गुरुवार के नमस्कार भारत के साथ मैं हूं फैसल मोहम्मद अली। ईरान परमाणु समझौते को लेकर अमेरिका में राजनीतिक रस्साकशी तेज, बन रहा राष्ट्रपति चुनाव का मुद्दा।
We should anticipate that Iran will test the next president.
हिंदू धर्म पर सवाल खड़े करने वाले कन्नड़ लेखक को मिला जान की धमकी वाला खत, और क्या अमेरिका और यूरोप ही हमेशा रहे हैं अरब शरणार्थियों की पनाहगाह?
तुर्की में आप देखेंगे कि सीरियन जो है वो 2 मिलियन से ज्यादा वहाँ पे, और जॉर्डन के पास जो है आपके अच्छे खासे, लेबनान में भी हैं काफी, और अगर लीबिया यमन सिक्योर रहता।
देखेंगे कि क्या कर रहे हैं भारतीय अखबार, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार अमल चौधरी से। डेनमार्क की राष्ट्रीय रेल कंपनी ने जर्मनी से आने और जाने वाली सभी ट्रेनों को रद्द कर दिया है। डेनमार्क की पुलिस और सैकड़ों शरणार्थियों के बीच झड़प होने के बाद डेनमार्क ने यह कदम उठाया। वहीं दूसरी तरफ कई शरणार्थियों का कहना था कि वो सीधे स्वीडन जाना चाहते हैं, जहां शरणार्थियों को लेकर कानून डेनमार्क के मुकाबले अधिक उदार हैं। हालांकि डेनमार्क के प्रधानमंत्री लार्स लोक रासमुसेन का कहना है कि पुलिस कभी भी शरणार्थियों पर जोर जबरदस्ती नहीं कर सकती। सीरियाई सेना के पूर्वोत्तर प्रांत इदलीब में अपने आखिरी सैन्य ठिकाने का नियंत्रण भी खो दिया है। अलकायदा से जुड़े नुसरा फ्रंट के चरमपंथियों ने सैन्य हवाई अड्डे पर कब्जा कर लिया। चरमपंथियों ने इलाके में धूल भरी आंधियों का फायदा उठाते हुए अबू दुहर सैन्य हवाई अड्डे पर नियंत्रण कर लिया है। सरकारी मीडिया का कहना है कि सीरियाई सेना इस सैन्य ठिकाने से हट गई है, जबकि विद्रोहियों ने ऐसे वीडियो जारी किए हैं जिसमें सैनिकों को ये कहते हुए दिखाया गया है कि उन्हें कैदी बना लिया गया है। जॉर्डन के प्रिंस अली बिन अल हुसैन एक बार फिर से फुटबॉल की अंतर्राष्ट्रीय नियामक एजेंसी फीफा के अध्यक्ष पद के लिए खड़े हुए हैं। फीफा पर भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद पूर्व अध्यक्ष सेप ब्लैटर ने इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद फिर से चुनावों की घोषणा की गई है जिसमें उन्होंने अपना नाम रखा है। जॉर्डन की राजधानी अमान में अपनी उम्मीदवारी की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि वही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो ब्लैटर के खिलाफ खड़े हुए थे, और उन्होंने जो शुरू किया है वो उसे ज़रूर ख़त्म करेंगे। उन्होंने कहा,
It's time for us to stand up for what we believe in. I am my own man.
समय आ गया है कि हम उन चीज़ों के लिए खड़े हों जिन पर हम विश्वास करते हैं। मैं एक अलग व्यक्ति हूँ और मेरी मान्यताएं भी अलग हैं। हर किसी की सोच उसकी अपने अनुभवों से विकसित होती है। मैं यहाँ उन लोगों के लिए आया हूँ जिन्हें खेल से प्यार है। मैं ही था जिसने फीफा में बदलाव लाने की हर मुमकिन कोशिश की थी। जॉर्डन के प्रिंस अली बिन अल हुसैन के शब्द। 4 महीने पहले हुए चुनावों में अध्यक्ष पद की दौड़ में अली बिन अल हुसैन भी थे। हालांकि पहले राउंड में हुई वोटिंग का कोई नतीजा नहीं निकलने के बाद उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया था। अमेरिका की रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर ने ब्राज़ील को जंक स्टेटस दिया है। ब्राज़ील में सरकार जहां एक तरफ बढ़ते कर्ज की समस्या से निपटने के रास्ते तलाश रही है, वहीं देश में राजनीतिक उथल पुथल भी जारी है। न्यूयॉर्क स्थित इस एजेंसी ने कहा कि यह रेटिंग ब्राज़ील की राजकोषीय नीति में गिरावट की वजह से दी गई है। एजेंसी का यह भी कहना है कि राष्ट्रपति दिल्मा रोसेफ और उनके कैबिनेट में सामंजस्य की कमी है, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। मंगलवार को क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय ब्रिटेन के इतिहास में सबसे अधिक समय तक राजगद्दी पर आसीन रहने वाली महारानी बन गई थीं, जिसके बाद बुधवार को उन्होंने लोगों को उनकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी रेडियो के सुबह के कार्यक्रम नमस्कार भारत में आप सबका स्वागत है। आप हमारे इस और दूसरे सभी रेडियो कार्यक्रमों को रेडियो सेट के अलावा मोबाइल और हमारी वेबसाइट bbchindi.com पर सुन सकते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे ईरान परमाणु समझौते से। अमेरिका के नेतृत्व में ईरान के साथ हुए परमाणु समझौते को लेकर वाशिंगटन में राजनीतिक रस्साकशी तेज और तेज होती जा रही है, जहां एक तरफ ये लगने लगा है कि राष्ट्रपति ओबामा इस समझौते को लागू करने में शायद कामयाब हो जाएं, वहीं दूसरी तरफ इसके विरोधी इसे खारिज करवाने के लिए पूरी ताकत से जुट गए हैं। इस समझौते पर मुहर लगने की आखिरी तारीख में बस चंद ही दिन बाकी हैं। वॉशिंगटन से बीबीसी संवाददाता ब्रजेश उपाध्याय की रिपोर्ट।
नेक्स्ट गेस्ट रियली डजंट नीड मच ऑफ एन इंट्रोडक्शन, बिजनेसमैन डोनाल्ड ट्रंप। वॉशिंगटन में बुधवार को रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी की रेस में सबसे आगे चल रहे डोनाल्ड ट्रंप जब ईरान के साथ हुए परमाणु समझौते के खिलाफ आयोजित रैली में उतरे तो पीछे बज रहा था ये गाना। अमरीकी रॉक बैंड REM का ये गाना है इट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया खत्म होने जा रही है। रैली में ट्रंप समेत सभी नेताओं का पैगाम भी यही था कि ईरान के साथ हुआ ये समझौता इसराइल के साथ साथ दुनिया को खत्म कर देगा। ट्रंप ने अपने चिर परिचित अंदाज में ओबामा प्रशासन पर निशाना साधते हुए कहा,
We are led by very, very stupid people. Very, very stupid people. We cannot let it...
कांग्रेस को 17 सितंबर तक ये फैसला करना है कि वो इस समझौते को मंजूर करेंगे या नहीं, और रैली में मौजूद नेताओं की कोशिश थी उन डेमोक्रेट सेनेटरों पर दबाव बनाने की जो इसके हक में हैं। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के रेस में शामिल सेनेटर टेड क्रूज का कहना था कि ये समझौता इसराइली और अमरीकियों के कत्लेआम का रास्ता खोल देगा।
If it goes through, over $100 billion will flow directly to Iran, to the Ayatollah Khamenei.
टेड क्रूज का कहना था कि समझौते से 100 अरब डॉलर से ज्यादा की राशि ईरान और उसके नेता आयतुल्ला खमेनेई के हाथों में पहुंचेगी। इस पैसे से वो हमास, हिजबुल्ला और दूसरे इस्लामी जिहादी ताकतों की मदद करेंगे और ये आतंकवादी उस पैसे से अमरीकियों और इसराइलियों का कत्लेआम करेंगे। उसी रैली से कुछ दूर कैपिटल हिल के बाहर जमा हुए थे अपने पारंपरिक काले कोट और यहूदी टोपी किप्पा पहने हुए 100 से ज्यादा यहूदी रबाई, जिनका कहना था कि यह समझौता इसराइल के वजूद को खतरे में डाल रहा है। वॉशिंगटन के थिंक टैंक्स में भी खासी गहमा गहमी है। समझौते के हक में और उसके खिलाफ बोलने वालों का तांता लगा हुआ है, और अब जबकि यह तय है कि ईरान अमरीकी चुनाव में भी बड़ा मुद्दा बन सकता है तो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार भी इन मंचों का इस्तेमाल कर रहे हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवारी की रेस में सबसे आगे चल रही हिलरी क्लिंटन ने इस समझौते का पूरी तरह से समर्थन किया, लेकिन साथ ही कहा कि वो ईरान पर पैनी नजर रखेंगी।
We should anticipate that Iran will test the next president.
हिलरी क्लिंटन कह रही थी कि हमें इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि ईरान अगले राष्ट्रपति का पूरी तरह से इम्तिहान लेगा। वो देखना चाहेंगे कि वो किस हद तक समझौते को तोड़ मरोड़ सकते हैं, लेकिन अगर मैं व्हाइट हाउस में पहुंची तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। लेकिन राष्ट्रपति ओबामा अब से 1.5 साल बाद की नहीं अगले हफ्ते की सोच रहे हैं, जब कांग्रेस में इस समझौते पर फैसला होना है। कांग्रेस के दोनों ही सदनों में रिपब्लिकन्स बहुमत में हैं, लेकिन ओबामा कह चुके हैं कि अगर कांग्रेस इस समझौते को खारिज करती है तो अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करेंगे। ब्रजेश उपाध्याय, BBC वॉशिंगटन।
और अब भारत का रुख। मशहूर कन्नड़ लेखक KS भगवान को पिछले लगभग 10 दिनों में मंगलवार को दूसरी बार जान से मारने की धमकी मिली। उन्हें खत में धमकी दी गई कि वो चाहे कितनी पुलिस सुरक्षा में हो लेकिन वो बचेंगे नहीं। भगवान ने हिंदू देवी देवताओं के कई मामलों पर कुछ सवाल खड़े किए थे। इससे पहले कर्नाटक में प्रोफेसर कलबुर्गी की हत्या कर दी गई थी, वो भी इसी तरह के मामलों पर सवाल उठाते रहे थे। बेंगलोर से इमरान कुरैशी की रिपोर्ट।
9 दिन पहले जिस तरह की धमकी ट्वीट के जरिए दी गई थी, अब वो सीधी चिट्ठी में दी गई है। अंग्रेजी में लिखी हुई चिट्ठी कहती है, ये समझकर आराम ना करें कि तुम सुरक्षित हो। एक सांप 12 साल के बाद भी बदला लेती है। 3 में सफल हैं, तेरी अगली बारी है। हमारा निशाना कभी नहीं विफल होता। पुलिस की सुरक्षा जितनी भी हो वो तुम्हें बचा नहीं सकती। खत में आगे कहा गया है, हमें पता है कैसे करना, अभी तेरे दिन गिन। कर्नाटक के मशहूर लेखक KS भगवान, जिन्हें ये चिट्ठी भेजी गई है, कहते हैं,
टुडे द लेटर केम बाय पोस्ट, आई वाज नॉट होम।
जब चिट्ठी आई तो हम घर पर नहीं थे। हमारी पत्नी ने पुलिस को इतला दी और मुझे भी। पुलिस फौरन सुरक्षा बढ़ा दी है। ये थे KS भगवान के शब्द। KS भगवान मैसूर यूनिवर्सिटी के कन्नड़ा भाषा के रिटायर्ड प्रोफेसर हैं। उन्होंने फरवरी महीने में हिंदुओं के भगवान राम के बारे में बहुत सारे सवाल उठाए थे। इसी तरह के सवाल कन्नड़ा भाषा में पहले भी दूसरे कन्नड़ा लेखक उठा चुके हैं। KS भगवान कहते हैं, वो इन धमकियों से नहीं डरते हैं।
This narrow-minded thinking, फंडामेंटलिज्म।
दुनिया में संकीर्ण सोच दिमाग के लोग और कट्टरपंथियों तो हैं ही, लेकिन शरारती तत्वों के लोगों का हौसला बढ़ जाता है जब वह समझते हैं कि उनकी सरकार केंद्र में है। हमारी सौभाग्य है कि हमारे प्रधानमंत्री संविधान के अनुसार जाते हैं। अगर इस तरह के वाक्या होते गए तो यह हमारी स्वतंत्रता पर बाकायदा असर पड़ेगा। ये थे के एस भगवान के शब्द। हाल में ही मशहूर विद्वान कलबुर्गी की हत्या कर दी गई थी। उन्हें हिंदू कट्टरपंथियों से खतरा बताया गया था। डॉक्टर कलबुर्गी ने सवाल लिंगायत समाज के प्रचलित मान्यताओं पर उठाए थे। के एस भगवान शंकरा और रामायणा पर उठाए हैं। ये कोई नई बात नहीं है। कन्नड़ा साहित्य में इस तरह के सवाल 10वीं सदी से पूछे जा रहे हैं। सवाल है, अब क्यों इन लेखकों को मारा जा रहा है या धमकी दी जा रही है। बेंगलुरु से इमरान कुरैशी।
और अब हमारी विशेष श्रृंखला जो भारत के अंगदान के ऊपर की जा रही है। भारत में अंगदान के लिए जो कानून बनाया गया था वो 1994 में तैयार किया गया था, जिसमें कई बार बदलाव यानी संशोधन भी किए गए हैं। कानून के हिसाब से मानव अंगों को खरीदना और बेचना दोनों ही गैर कानूनी है और इसके लिए सजा का प्रावधान है। जो लोग जीवित हैं वो सिर्फ अपने खून के रिश्तेदारों को ही अंगदान कर सकते हैं। भारत में अंगदान से जुड़े कानून की और उसके क्रियान्वयन पर सलमान रावी की रिपोर्ट।
कहने को तो भारत में अंगदान के लिए कानून तो है, मगर बहुत कम लोग ही हैं जिन्हें इसके बारे में कुछ भी जानकारी है। आज भी अंगदान के बारे में ना तो अस्पतालों को ज़्यादा जानकारी है और ना ही किसी को ये पता है कि किन परिस्थितियों में अंगदान किया जा सकता है। नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी नोटो के निदेशक सौदान सिंह ने BBC से बात करते हुए कहा कि नए कानून के तहत अंगों का प्रतिरोपण करने वाले अस्पतालों का पंजीकरण अनिवार्य है, मगर अभी भी कई राज्य ऐसे हैं जहां के अस्पतालों ने पंजीकरण नहीं करवाया है।
इसके लिए हमको सभी जो हमारे प्रदेश हैं उनसे हमारे पास डाटा आना चाहिए। हमने सभी जो प्रदेश हैं उनके उनसे कहा है कि आप अपने हॉस्पिटल रजिस्टर कराइए और रजिस्टर होने के बाद हमें अपने वेटिंग लिस्ट पे मरीज के जहां पर भी जिसको मरीज को अपना ट्रांसप्लांट कराना है जिस डॉक्टर से, वो रजिस्टर कराने के बाद वो हमसे हमारे पास सारे डाटा आ जाएगा। डाटा आने के बाद हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो जो एक लिस्ट बनती है जो बिल्कुल ही इसको कोई छेड़ नहीं सकता, और वो बनने के बाद हमारे प्रायोरिटी पता लग जाती है, वो ऑटोमेटिकली वेबसाइट पर डिस्प्ले होगी और होने के बाद हम प्रायोरिटाइज कर सकते हैं कि किस आदमी को किसका नंबर पहले आता है।
मौजूदा कानून के हिसाब से जिनसे खून का रिश्ता हो सिर्फ वही लोग मरीज को अंगदान कर सकते हैं। इनमें ससुराल के लोग अपने दामाद या अपनी बहू को अंगदान नहीं कर सकते। अंगदान की दूसरी सूरत है ब्रेन डेड घोषित किए गए मरीज, और इसके लिए जागरूकता फैलाने वाली संस्था मोहन फाउंडेशन की पल्लवी कुमार कहती हैं कि कानून में कई खामियां हैं मगर राज्य सरकारें अपने स्तर पर इनमें संशोधन कर सकती है।
एक्ट में बोलते हैं कि जहां एक्सीडेंट साइट है वो आके वो हॉस्पिटल इंक्वेस्ट करती है, इंक्वेस्ट होता है, वो अपने इंक्वेस्ट रिपोर्ट तैयार करते हैं, फिर वो फोरेंसिक डिपार्टमेंट के पास जाते हैं, फोरेंसिक उनको गो अहेड देता है ऑर्गन डोनेशन की, तभी जाके ऑर्गन डोनेशन हो सकता है। नाउ वेरी ऑफन एक्सीडेंट्स टेक प्लेस समवेयर कहाँ दूर कहीं हाईवे पे और आपको लाए यहाँ पे, अब फैमिली यही करती रहेगी वहाँ भाग रही है, क्यों करेगी, वो कभी नहीं करेगी। तो हॉस्पिटल्स भी तो इतने सारे इन तो तमिलनाडु ने बोला नहीं ये हमारे लिए वर्क नहीं कर रहा है, तो उन्होंने एक गवर्नमेंट आर्डर पास किया जो कि कमिश्नर ऑफ पुलिस ने सारे पुलिस स्टेशन को बताया कि ऑर्गन डोनेशन का कोई केस होगा तो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन इंक्वायरी करेगा एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट यू कोऑपरेट विद द फैमिली एंड थिंग्स आर डन इन द मिनिमम पॉसिबल टाइम। इस तरह के ऑर्डर्स जिनकी क्लैरिटी शायद एक्ट के तहत नहीं है क्योंकि एक्ट इतना बड़ा होता है, तो वो उन्होंने अपने लेवल पे पास कर दिया।
हालांकि नोटो के निदेशक का कहना है कि जब तक सभी अस्पतालों में अंगों के प्रतिरोपण का इंतजार कर रहे मरीजों की जानकारी एक जगह मौजूद नहीं होगी तब तक पता लगाना भी मुश्किल होगा कि कितने लोगों को अंग चाहिए और किन जगहों पर।
ये हमारा जैसे एक्ट आया है हमारे पास अभी डाटा उपलब्ध नहीं है जो जिससे हम कह सकते हैं कि जो वेटिंग लिस्ट है कितने लोग इंतजार कर रहे हैं, तो हम ये इसके लिए पूरे देश के जो स्टेट्स हैं यूनियन टेरिटरीज हैं उनके ऊपर निर्भर रहते हैं और साथ साथ में अवेयरनेस भी नहीं है। जो एक्सपर्ट की बात करें डॉक्टर्स में इसकी जानकारी नहीं है, हम अच्छे अच्छे संस्थानों में इवन बेसिक सवाल डॉक्टर से पूछते हैं तो वो इसके आंसर नहीं दे पाते हैं कि ब्रेन डेथ कमिटी के ब्रेन डेथ क्या होता है, वो आंसर नहीं दे पाते हैं।
वहीं मोहन फाउंडेशन की पल्लवी कुमार कहती हैं कि ब्रेन डेड घोषित किए गए मरीज की तरफ से अंगदान का प्रतिशत मात्र 20 तक ही है, जबकि ज्यादातर अंगदान जीवित व्यक्तियों द्वारा ही किया जा रहा है।
सिर्फ ट्रांसप्लांट सेंटर्स, सिर्फ जो बड़े ट्रांसप्लांट हॉस्पिटल्स हैं जो ट्रांसप्लांट्स कर रहे हैं, लाइव ट्रांसप्लांट्स हमारी कंट्री में 80% जो ट्रांसप्लांट्स हो रहे हैं वो लाइव हो रहे हैं और 20% डिसीज्ड हो रहे हैं। कोई भी हेल्दी और डेवलप्ड इकोनॉमी होती है वहाँ पे उल्टा होता है। आप 80-90% आप डिसीज्ड डोनेशन से आप ट्रांसप्लांट्स करें और कम जो रह गए हैं उनके आप लाइव से करें। वही हॉस्पिटल जो ट्रांसप्लांट कर रहे हैं और उनके वेटिंग लिस्ट पे जो लोग हैं जिन्होंने अपने सारे एवेन्यूज एग्जॉस्ट कर लिए हैं, उनके पास कोई नहीं ऑर्गन देने वाला और अब उनको सिर्फ डिसीज्ड डोनेशन से ही फ़ायदा होगा, वो हॉस्पिटल्स हैं जो उसमें इंटरेस्टेड हैं। और नॉन ट्रांसप्लांट सेंटर्स को तो ना ये मुद्दा समझ में आता है ना उनको इसमें अपना इन्वॉल्वमेंट समझ में आता है।
अंगदान के मामले में स्पेन दुनिया का सबसे अग्रणी देश है, जहां प्रति 10 लाख लोगों में अंगदान करने वाले लोगों का प्रतिशत 35.3 है। इस देश में हर किसी को कानूनन अंगदान करने वाला मानकर चला जाता है, जबकि ईरान एकमात्र देश है जहां मानव अंगों को आधिकारिक तरीके से खरीदा जा सकता है। भारत में प्रति 10 लाख मात्र 0.34 लोग ही अंगदान करते हैं, जो नहीं के बराबर है। मगर अंगदान के लिए लोगों को प्रेरित करने वाली संस्थाओं का कहना है कि अब धीरे धीरे हालात बेहतर हो रहे हैं। इन संस्थाओं को लगता है कि भारत में भी अगर अंगदान करना अनिवार्य बना दिया जाए तो अंगों के प्रतिरोपण के इंतजार करने वाले मरीजों की संख्या में काफी कमी आ जाएगी। सलमान रावी, BBC दिल्ली।
और अब देखते हैं कि भारतीय अखबार क्या कर रहे हैं। ये बताइए अमल की अखबार क्या कर रहे हैं, मारिया के बारे में कह रहे हैं
नहीं
या बिहार चुनाव?
आज तो हर अखबारों में बिहार में जो विधानसभा चुनावों की जो तारीखों की घोषणा हुई है वही हर जगह छाए हुए हैं। अंग्रेजी अखबारों की बात करें तो टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है खेल शुरू, नीतीश के साथ लड़ाई का मैच मोदी को बना सकता है कप्तान। द पायनियर लिखता है 5 हिस्सों में बिहार का घमासान 12 अक्टूबर से। इंडियन एक्सप्रेस का शीर्षक है बिहार में उल्टी गिनती शुरू, 1 महीने में 5 हिस्सों में होंगे चुनाव। वहीं स्टेट्समैन ने लिखा है बड़े दाव वाले बिहार चुनाव 12 अक्टूबर से। हिंदुस्तान टाइम्स की बात करें तो उसने भी इस खबर को प्रकाशित किया है, लेकिन उसकी मुख्य खबर बिजनेस से जुड़ी हुई है। खबर का शीर्षक है सोने पर मिलेगा ब्याज। इसमें सरकार की एक नई स्कीम के बारे में बताया गया है, जिसमें यह है कि अगर आप सोने को बैंक में जमा करते हैं तो उस पर आपको 2.5% का ब्याज भी आपको मिलेगा।
तो सोना पहनेंगे कैसे लोग?
अगर आपको पैसा चाहिए तो आपको उसे बैंक में जमा कराना पड़ेगा। वहीं द हिंदू ने तमिलनाडु में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मीट की खबर को अपनी मुख्य खबर बनाते हुए शीर्षक दिया है कि निवेश लक्ष्य हासिल किया, ये जयललिता ने बयान दिया है और इसी को उन्होंने अपना शीर्षक बनाया है। हालांकि अखबार ने बिहार चुनाव की खबर को भी प्रकाशित किया है। हिंदी अखबारों का रुख करें तो जनसत्ता लिखता है बिहार 5 चरणों में होंगे चुनाव। दैनिक भास्कर ने लिखा है मोदी नीतीश की परीक्षा। वहीं अमर उजाला का शीर्षक है कि बिहार में किसकी मनेगी दिवाली। नवभारत टाइम्स ने लिखा है बिहार में गूंजा गेट सेट गो। वहीं हिंदुस्तान हिंदी ने लिखा है कि बिहार में 12 अक्टूबर से होंगे चुनाव। अन्य खबरों की बात करें तो एप्पल का जो आईफोन 6 और 6S है, उसके बाद उन्होंने जो अपना एप्पल का आईपैड प्रो लॉन्च किया, उसके बाद टीवी लॉन्च किया, उसकी खबरों को काफ़ी अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर लिया है जी। और फिर सऊदी के राजनयिक पर जो दुष्कर्म का आरोप है वो भी है, और कॉल ड्रॉप पर कंपनियों को चेतावनी दी गई है, हिंदुस्तान हिंदी ने अपने
पहले पेज पर। प्रधानमंत्री ने भी बात की
जी बिल्कुल, और इसको अपने पहले पेज पर दिया है हिंदुस्तान हिंदी ने। और उसके बाद बाकी अखबारों में भी ये है खबर कि बैंकों में सोना जमा करने पर जो आपको अतिरिक्त जो ब्याज मिलेगा उसकी खबर है, और उसके बाद आसाराम के काले धन की तलाश की खबर को भी प्रमुखता से शामिल किया गया है पहले पन्ने पर।
तो आसाराम के काले धन मिलने की आशा है
बिल्कुल।
और अब देखिए कि किन किन खबरों पर रहेगी हमारी नजर आज दिन भर, क्या क्या अहम हो रहा है। अमल चौधरी,
लंदन में विश्व परमाणु संघ की वार्षिक संगोष्ठी हो रही है, जिसमें 30 देशों के करीब 600 नेता शिरकत करेंगे। यह संगोष्ठी 11 सितंबर तक चलेगी। युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी और उनकी पत्नी जेनेट मुसेवेनी जापान के राजा अकिहितो, रानी मिचिको और प्रधानमंत्री शिंजो आबे से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों देशों के संबंध सुधारने पर चर्चा की जाएगी। जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल बर्लिन में शरणार्थी पंजीकरण केंद्र का दौरा करेंगी। वहां वो मौजूद लोगों से उनकी स्थिति पर बात करेंगी और उसके बाद एक स्कूल का भी दौरा करेंगी, जहां वह छात्रों से शरणार्थियों के विषय पर चर्चा करेंगी। इसराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन से मुलाकात करेंगे। लंदन के लिए उड़ान भरने से पहले उन्होंने पत्रकारों से कहा कि वो कैमरन से कहेंगे कि चरमपंथ से लड़ने में ब्रिटेन को इसराइल का साथ देना चाहिए। कनाडा में गुरुवार से टोरंटो फिल्म फेस्टिवल 2015 की शुरुआत होगी। 20 सितंबर तक चलने वाले इस फेस्टिवल में 12 फिल्में दिखाई जाएंगी, जिसमें जीतने वाली फिल्म को 25,000 कैनेडियन डॉलर यानी 12 लाख भारतीय रुपये मिलेंगे।
और अब सुनते हैं दुनिया जहान। युद्ध और चरमपंथ की मार झेल रहे मध्य पूर्व और अफ्रीकी देशों से बेघर बार हुए लोगों का प्रवाह बड़ी तेजी से यूरोप का रुख कर रहा है। क्या सचमुच ये तादाद इतनी बड़ी है कि इससे दुनिया को चिंता करनी चाहिए? जान दांव पर लगा यूरोप ही क्यों जा रहे हैं लोग? संपन्नता से भरे सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात क्यों नहीं? ये सवाल भी खड़े हुए हैं कई हलकों में। प्रवासियों के संकट से जुड़े इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश की है दुनिया जहान के इस अंक में निखिल रंजन ने।
दुनिया जहान। एरिट्रिया में सेना, सोमालिया में अलशबाब, सीरिया में इस्लामिक स्टेट, अफगानिस्तान में गरीबी और पश्चिम अफ्रीका में अशांति से जूझ रहे लोगों की जुबान पर बस यही नारा सुनाई दे रहा है। इन देशों के बाशिंदे अपना वतन छोड़कर भूमध्य सागर की लहरों पर सवार हो अपने लिए नई जमीन तलाशने निकल रहे हैं। छोटी बड़ी नावों से जान जोखिम में डालकर जिंदगी बचाने या बेहतर बनाने चले लोगों का एक बड़ा हिस्सा तो समंदर में ही समा जाता है और जो बच जाते हैं उन्हें दुनिया शरणार्थी के नाम से जानती है। ये वही लोग हैं जिन्होंने इन दिनों यूरोप की नींद उड़ा रखी है और जिनकी तस्वीरें दुनिया भर की मीडिया में हलचल पैदा कर रही हैं। आखिर इन प्रवासियों की मंजिल यूरोप ही क्यों है? ब्रसेल्स में सालों से रह रहे वरिष्ठ पत्रकार नवाब खान,
ये रेफ्यूजीज हैं, इनको मालूम है कि यहाँ यूरोप में इनके ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस हैं जो रेफ्यूजीज को अजाइलम देते हैं, तो यही एक वजह है जो यहाँ से इतनी बड़ी तादाद से चली आ रही।
बीते दिनों यूरोप में प्रवासियों के पहुंचने की खबरों ने जिस तरह सिर उठाया उसने ऐसी धारणा बनाई जैसे कि पूरा यूरोप प्रवासियों से भर गया हो, लेकिन जानकार बताते हैं कि वास्तव में ये संख्या बहुत कम है, खासतौर से जॉर्डन, लेबनान और तुर्की में रह रहे प्रवासियों की तुलना में। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में राजनीति पढ़ाने वाले प्रोफेसर अर्शी खान,
अगर तुर्की में आप देखेंगे कि सीरियन जो है वो 2 मिलियन से ज्यादा वहाँ पे, और जॉर्डन के पास जो है आपके अच्छे खासे बहुत अच्छे संख्या में वहाँ पे भी लोग हैं, बल्कि जॉर्डन को काफी परेशानी हो रही है वहाँ पे। इसी तरह से आप देखें कि लेबनान में भी हैं काफी, और अगर लीबिया बिल्कुल सही रहता और सिक्योर रहता या येमेन सिक्योर रहता तो हो सकता था कि बहुत सारे जो शरणार्थी हैं वो येमेन आ सकते थे।
जॉर्डन, लेबनान, तुर्की और कुवैत जैसे देशों की बात तो ठीक है, लेकिन सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश इन शरणार्थियों की मदद के लिए आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आए। इन मुल्कों का ध्यान आखिर इस त्रासदी की ओर क्यों नहीं जा रहा?
एक तो फंड पॉलिसी डेफिसिट है इनके पास, बल्कि इनके पॉलिसी के कारण बहुत सारे शरणार्थी पैदा हुए, लेकिन इनका जो सेकंड ट्रैक पे जो पॉलिसी होना चाहिए था कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो उनके पास कोई रोड मैप नहीं है। हिस्टोरिकली आप देखेंगे तो सऊदी अरबिया ने कभी भी रिफ्यूजी को वेलकम नहीं किया, केवल एक ही तरह के रिफ्यूजी थे, बल्कि रिफ्यूजी क्या काम करने वाले जो लोग थे जिसको बोलते हैं वर्किंग क्लास, लेकिन उस तरह का आप देखेंगे कि वो सऊदी में नहीं। सऊदी में सिर्फ 2 तरह के लोग आए, एक तो वो फिलिस्टीनियन आए और फिर उसमें कुछ आपके इजिप्शियन आए थे, तो इजिप्शियन वो भी शरणार्थी नहीं बल्कि काम करने वाले लोग। तो एक्चुअली ह्यूमैनिटेरियन वेलफेयर एक्टिविटीज में अगर आप देखें तो सऊदी से बेटर रोल दूसरी कंट्रीज का है। यूरोप जाना जो है वो समझिए कि एक तरह का प्रोटेस्ट है अगेंस्ट सऊदी पॉलिसी।
यूरोप पहुंचने वाले प्रवासियों की तादाद कम होने के बावजूद भी संख्या मामूली नहीं है। यूरोप के कई देश प्रवासियों की इस बहती चली आ रही धारा को अपनी जमीन देने को तैयार नहीं, और इसकी वजह से यूरोपीय देशों में भी काफी विवाद हो रहा है। बहुत से देशों ने तो धर्म के आधार पर भी दीवार खड़ी करने की कोशिश की है। नवाब खान,
हंगरी के जो प्रधानमंत्री हैं विक्टर ऑर्बन साहब ने यहाँ ब्रसेल्स के आज से पिछले हफ्ते उन्हें खुले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि साहब हम जो है मुसलमानों को यहाँ नहीं आने देंगे, नहीं रहने देंगे। ऐसे ही आपके स्लोवाकिया ने भी कहा, साइप्रस ने भी कहा कि हम जो है सिर्फ ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस को पनाह देंगे। ऐसी जो बातें करते हैं ये राइटिस्ट और न्योनाजी ग्रुप के जो और भी कई मसाला दे रहे हैं ये और भी खिलाफ हो जाए।
जर्मनी ने अगले कई सालों तक लाखों की तादाद में प्रवासियों को कबूल करने की बात कही है, जबकि जर्मन चांसलर ये मान रही हैं कि इसका उनके देश पर काफी असर होगा।
आज हम जिन हालात का सामना कर रहे हैं वो आने वाले सालों में हमारे देश पर छा जाएंगे और हमारे देश को बदल देंगे। हम चाहते हैं कि अच्छाई के लिए ये बदलें और हमें यकीन है कि हम ये कर सकते हैं।
हंगरी में रोक कर रखे गए लोगों के लिए जब जर्मनी ने अपने दरवाजे खोले तो वहां के आम लोगों का इन प्रवासियों के स्वागत के लिए उमड़ा उत्साह देखने लायक था। आखिर जर्मनी इन प्रवासियों के स्वागत में इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रहा है? जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर यूरोपियन स्टडीज की प्रोफेसर उम्मू सलमा बाबा,
यूरोपीय यूनियन जब 1992 में बना था तब तक पूर्वी जर्मनी का सबसे लिबरल असाइलम पॉलिसी रहा था, और इसका कारण एक ही है, वो है ऐतिहासिक। नाजी युग के दौरान काफी जर्मन लोग जर्मनी से निकल के दूसरे राष्ट्रों में और मुल्कों में अपनी जान बचाने के लिए गए थे, और उस चीज को याद रखते हुए कि कितने राष्ट्रों ने जर्मन निवासियों को जो है पनाह दी थी और उनको बचाया था, उस चीज को जर्मनी आज तक नहीं भूलता है और उसको लगता है नैतिकता के आधार पे। और जब मानव अधिकारों का हनन हो रहा है, चाहे और लोग करें या ना करें, तो जर्मनी को तो सामने जो है आना चाहिए।
हालांकि जानकार मानते हैं कि वजहें सिर्फ ऐतिहासिक नहीं है, मौजूदा वक्त में भी बहुत कुछ ऐसा है जो जर्मनी को इन देशों की मदद के लिए आगे ला रहा है। प्रोफेसर अर्शी खान,
सेकंड वर्ल्ड वॉर के पहले भी इंडस्ट्रियल काफी पावरफुल था और आज भी वो नंबर वन है, तो नेचुरली जर्मनी को जो है चीप लेबर चाहिए। दूसरा फैक्टर यह है कि जर्मनी भी चाहता है कि जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, जैसे बहुत सारे जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो आपके एनर्जी रिसोर्सेज रिच कंट्री, तो उसको भी एक लेजिटिमेसी चाहिए, उसको भी एक रोल चाहिए। लेकिन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबर नहीं है वो अभी फिलहाल, लेकिन वो ईरानी न्यूक्लियर डील में उसका काफी रोल रहा। तो जर्मनी खुद तलाश में है अपने एक नए अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक रोल के लिए, जो यूनाइटेड नेशन के लेवल पे और दूसरे हायर लेवल पे वो अपनी मतलब गरिमा को बना सके।
दुनिया के एक हिस्से की अशांति दूसरे हिस्से में चिंता और चुनौतियां खड़ी कर रही है, पर मदद के लिए सामने आ रहे लोगों का जज्बा इस संकट से उपजे हालात में भी बेहतरी का मौका बना रहा है। यूरोप के पास संसाधन और जज्बा तो है, लेकिन जॉर्डन और लेबनान ने जो किया है उससे इंसानियत को अपने ऊपर फख्र करने की एक वजह तो मिल ही गई है। निखिल रंजन, BBC, दिल्ली।
और अब एक नज़र खेल के ऊपर, खासतौर पे US ओपन में। ये बताएं अमल कि US ओपन का मैच देख रहे थे आप, सानिया मिर्ज़ा फाइनल में पहुंच गई हैं शायद।
जी, आज भारतीय टेनिस प्रेमियों के लिए काफ़ी उत्साह का दिन है। सानिया मिर्ज़ा और मार्टिना हिंगिस की जो जोड़ी है वो महिला के डबल्स मुकाबले में उन्होंने इटली की फ्लाविया पनेटा और सारा ईरानी को 6-4 और 6-1 से हरा दिया है सीधे सेटों में, और ये मैच लगभग 1 घंटे और 17 मिनट तक चला। तो जो इटली की जोड़ी थी उन्होंने पहले सेट में थोड़ा सा जोर दिखाने की कोशिश की, चार गेम उन्होंने जीते, लेकिन दूसरे सेट में सानिया मिर्ज़ा और मार्टिना हिंगिस ने उन्हें कोई मौका नहीं दिया, 6-1 से दूसरा सेट केवल 28 मिनट में जीतते हुए अपने नाम कर लिया।
मतलब ये समझिए कि उनकी जीत का दौर जो है जारी है।
बिल्कुल जारी है, और अगर वो फाइनल में पहुँच गई हैं और अगर जीतती हैं तो काफ़ी ऐतिहासिक होगा ये भारतीयों के लिए।
अच्छा
जी, बिल्कुल, ये पहला ऐसा मौका है कि विंबलडन भी उन्होंने अभी इससे पहले जीता था और ये अभी फिर से US ओपन जीतेंगी, तो ये ऐसा पहला मौका होगा कि कोई भारतीय विंबलडन और US ओपन जीतेगा।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया अखबारों की समीक्षा के लिए। और एक बार फिर प्रोग्राम खत्म करने से पहले सुनते हैं विश्व समाचार।
BBC समाचार। डेनमार्क की राष्ट्रीय रेल कंपनी ने जर्मनी से आने और जाने वाली सभी ट्रेनों को रद्द कर दिया है। डेनमार्क की पुलिस और सैकड़ों शरणार्थियों के बीच झड़प होने के बाद डेनमार्क ने यहाँ कदम उठाया। सीरियाई सेना ने पूर्वोत्तर प्रांत अदलीब में अपने आखिरी सैन्य ठिकाने का नियंत्रण भी खो दिया है। बीबीसी समाचार।